श्लोक संख्या
45।
अच्छा
45 आधा हुआ है पिछले शुक्रवार को, उसके आगे का भी आज प्रयास करेंगे चर्चा करने का। सबको याद है, सबको स्मरण में है। 45 आधा हुआ था। 45 के जो 6 गुण है, त्रिगुण्य विषय वेदार्थ, ये श्लोक हुआ था, हमको याद है। आधा हुआ था, शुरुआत पढ़ना हुआ था। हाँ वो हुआ था, और फिर 45। चलिए फिर से रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45 को रिवाइज करते हैं 5-10-15 मिनट में, और फिर 46 करते हैं, है ना? हाँ वो भी करते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सब बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्लोक संख्या 45 और 46, 46 दोनों भी लेते हैं। तो 46 है, यावानार्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक संख्या 45 को हम फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदात निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इस श्लोक की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि जो इसके पहला श्लोक है 44, वो जो श्लोक है, इस श्लोक उस श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? वेदों की पुष्पिता वाणी है, वेदों की जो अलंकारिक भाषा है, स्वीट लैंग्वेज, मधुर भाषा, उस मधुर भाषा की ओर सारे जीव अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ी मधुरता है। वो भाषा बड़ी मधुर लगती है। क्यों लगती है मधुर? यहां पे उस श्लोक में कहा गया था कि ये बहुत मधुर भाषा है, परंतु इस भाषा की ओर आकर्षित मत हो अर्जुन, या इस भाषा की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। वो तो अलंकारिक भाषा है, मधुर भाषा है, पुष्पिता वाणी है, पर फिर भी उस भाषा की ओर आकर्षित, वेदों की वाणी है, फिर भी उस भाषा की ओर आकर्षित नहीं होने के लिए भगवान कह रहे हैं। क्यों? हाँ, उस भाषा में ऐसा क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उस भाषा में क्या वर्णन है? केवल वो भाषा में यह बताया गया है कि किस प्रकार से आप भोग को प्राप्त कर सकते हैं। हमको तो भोग चाहिए, इसलिए हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो भगवान कहते हैं वेदों की अलंकारिक भाषाओं को आकर्षित मत हो। तो उस श्लोक में वह बात हुई। फिर 45 में 45वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान 6 प्रकार की शिक्षाएं उपदेश इसमें देते हैं भगवान अर्जुन को, तो वह भी हमने देखा है ना। उसमें की 3 शिक्षाएं देखी है पिछले समय, 3 विषयों पे चर्चा हुई है। तो कौन सी 3 शिक्षाएं है? तो पहला ही श्लोक का पहला ही लाइन क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदात, अर्थात वेदों में मुख्यतः 3 गुणों का वर्णन है। त्रैगुण्य विषया वेदा, मतलब वेदों के जो विषय है वो मुख्यतः 3 गुण है, अर्थात 3 गुणों के ऊपर वेदों में चर्चा की गई है। कौन से है 3 गुण? सत्व रज तम। तो सत्व और रज और तम तीनों की चर्चा बड़ी विस्तार से हुई थी, एकदम डिटेल है कि नहीं? क्या है ये सत्व रज और तम, बता सकते हैं? जो कुछ भी बता सकते हैं बताइए। अच्छा, तामसिक से शुरुआत होगी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तामसिक क्या करता है? सत्वगुणी व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है, वो सोचता है मुझे स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग के लिए यदि स्वर्ग में जाना है तो अच्छे रहो, ठीक ठीक रहो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, किसी को तकलीफ मत दो। जो स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात सत्वगुणी प्योर हार्टेड पर्सन, शुद्ध हृदय जिसका है, शुद्ध हृदय अर्थात वो यह चाहता है कि मैं किसी को भी त्रास, किसी को भी व्याधि, मेरी वजह से किसी को भी व्याधि नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी को भी कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो यह सोचता है। और ऐसे अच्छे कर्म करता है, और अच्छा कर्म कोई भी करता है तो उसका प्रमोशन तो होता ही है। कभी सुना है किसी ने अच्छा कर्म किया और उसका डिमोशन हो गया? अच्छा कर्म करता है तो प्रमोशन हो जाता है, लेकिन कहां तक प्रमोशन होना चाहिए, कौन सा प्रमोशन हमको चाहिए, यह भी सोचने वाली बात है। पर सत्वगुण की व्यक्ति जो है उनका, वो कुछ अच्छे कर्म करते हैं एक सर्टन, एक विशेष मर्यादा में, और वह मर्यादा में वो कर्म करते करते क्या करते हैं, एक थोड़ा बहुत उनका प्रमोशन हो जाता है। कहां हो जाता है प्रमोशन? स्वर्ग। और फिर वहां क्या मिलता है? यहां से बहुत अच्छे भोग, यहां से बहुत अच्छा रेसिडेंस मिलता है, यहां से बहुत अच्छा वायु, मतलब नो पोल्यूशन, कोई वहां पे प्रदूषण नहीं है, बड़ा आनंद है, बड़ा आराम का महल मिलता है, सारे भोग प्राप्त होते हैं। और वह भोग बहुत अच्छे से, इंद्रिय तृप्ति वहां पे हो सकती है बहुत अच्छे से, और वह इंद्रिय तृप्ति के लिए यहां से लोग प्रमोशन लेके स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और जाके भी करना क्या है वहां पे? इंद्रिय तृप्ति। पर कैसे, कौन से माध्यम से? शांत, शांति से, किसी को डिस्टर्ब न करते हुए, करना इंद्रिय तृप्ति ही है, फर्क कुछ नहीं। दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी का क्या बताया था? आकर्षित रहता है, अट्रैक्शंस। उस व्यक्ति को यह सब धन ऐश्वर्य संतान यह सब बातें आकर्षित करते रहती है नित्य, इसकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित रहता है, इसके प्रति बहुत ज्यादा एंग्शियस आवेग में रहता है, रजोगुणी है। उसकी भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है कि वो रजोगुणी क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या विचार करते हैं। तीन मुख्य बातें हैं, विचार आचार और आहार। विचार आचार और आहार यह मुख्य बात है। ये विचार आचार और आहार के आधार पे तीनों में क्या अंतर है इसकी चर्चा हुई थी। तामसिक व्यक्ति कैसा विचार करता है, राजसिक व्यक्ति कैसा विचार करता है, सात्विक व्यक्ति कैसा विचार करता है, फिर आहार तीनों कैसे करते हैं, विहार अर्थात व्यवहार तीनों के कैसे होते हैं, और इन तीनों के ऊपर जो होता है शुद्ध सात्विक वो कैसे रहता है, इसका थोड़ा सा एक बार स्मरण आप कर लेना सुन के, अभी फिर से उसकी चर्चा नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह की बात हुई है, किस प्रकार से ये लोग अनुष्ठान करते हैं, और ये जो अनेकों प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं अनेकों शास्त्रों में, आप कहेंगे उसमें तो कहा है कि
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, कह सकते हैं कि ऐसे अमुक शास्त्र में बताया गया है, अमुक शास्त्र में बताया गया है कि महाकाली को भोग लगाओ, किसका?
भवानी माता को भोग लगाओ, किस चीज का? बलि दो, बलि का बकरा बोलते हैं ना, बलि का बकरा। अनेक प्रकार से इस प्रकार से लोग कुछ पढ़ के इस प्रकार से कार्य करते हैं, बलि का बकरा, या इस प्रकार से भोग लगाते हैं, तो ये सब चर्चा हुई थी। तो उन लोगों को उस स्तर पे ऊपर उठाने के लिए ये सब है, वो लोग वैसे ही मांसाहार करते हैं, पर मांसाहार करते हो जरा मर्यादित रहो, ये मर्यादा में रहो, और धीरे 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 ये मांसाहार के स्तर से बहुत ऊपर उठ जाओ, धीरे धीरे प्रमोशनल लाइफ का स्वीकार करो। हमारा जीवन लाइफ टाइम लाइफ कैसा है, पूरा जीवन भर हम क्या सोचते रहते हैं, प्रगति उन्नति प्रमोशन। तो भगवान ने वेदों में सभी कुछ दिया है सभी जीवों को, सारे जीवों का प्रमोशन करने के लिए, देयर इज नो डिमोशन, सभी का प्रमोशन होने के लिए वेदों की वाणी है। और वह वाणी किस प्रकार से सारे जीव स्वीकार करते हैं, तो उनके ऊपर जो गुणों का प्रभाव होता है उसके अनुसार, इसकी चर्चा पिछले शुक्रवार को हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, ऐसे लग रहा है कुछ नया ही बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा उपदेश भगवान दे रहे हैं। दूसरा उपदेश क्या है? दूसरा उपदेश है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठो। इन तीन गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, तो वेदों का प्रयोजन क्या है, वेद है किस लिए? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तीन गुणों से उठो, अर्थात वेदों का प्रयोजन है तीन गुणों के ऊपर चले जाना। वेद है इसलिए क्योंकि हम वेद चाहते हैं कि हम तीन गुणों के ऊपर उठे, अर्थात तीनों गुणों का प्रभाव हमारे पे न होने, यह बात वेद सिखाते हैं, यह उपदेश वेदों में। जो गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा उस गुण से ऊपर उठना है। कोई तामसिक होगा तो तामसिक से वो राजसिक स्तर पे आ जाए, कोई राजसिक होगा तो राजसिक से वो सात्विक स्तर पे आ जाए, कोई सात्विक होगा तो शुद्ध सात्विक भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाए।
सॉरी। तो यहाँ पे भगवान वेदों का प्रयोजन भी बताए हैं दूसरे पॉइंट में। सत्व गुण में शरीर छूटने पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, रजोगुण में शरीर छूटने पे पृथ्वी लोक की प्राप्ति होती है, और तमोगुण में शरीर छूटने से अधोगति होती है, इसकी चर्चा हुई थी। परंतु निर्गुण अवस्था में शरीर छूट जाता है तो क्या होता है? गोलोक धाम वृंदावन की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव तभी नहीं होगा जब भगवान का प्रभाव होगा। प्रभाव तो किसी का ना किसी का होगा, जब भगवान का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा, भगवान से पूरी तरह से प्रभावित होगे, तो भगवान की भावना अमृत से सारा बोर हो जाएंगे, भर जाएंगे भगवान की भावनाओं से, भगवान की भावना अमृत से, तो इन तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होगा और फिर गोलोक धाम वृंदावन की प्राप्ति होगी। और ये जो निवास की बात है तो वहां चर्चा हुई थी कि इसलिए भगवान के मंदिर में निवास करना चाहिए, अर्थात अपने घर को भी मंदिर बनाइए और कम से कम एक बार तो मंदिर में जाइए हफ्ते में, ये कम से कम होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट, अभी उस सब की चर्चा नहीं होगी, बहुत विस्तार से हुआ था सब। तीसरा पॉइंट क्या है? निर्द्वंद्व। हे अर्जुन, तुम निर्द्वंद्व बनो। निर्द्वंद्व बनो अर्थात द्वंद्व से ऊपर उठो। द्वंद्व से कैसे ऊपर उठा जा सकता है? द्वंद्व क्या है यह समझना पड़ेगा। देखिए द्वंद्व किसको कहते हैं? तो द्वंद्व अर्थात सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, शत्रु मित्र, लाभ हानि, ये द्वंद्व है। हम सब इस द्वंद्व में पड़े हैं, नहीं पड़े? हमारे साथ कभी भी कोई एक बात नहीं होती है, कभी देखा होगा आपने, कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी होती है। कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं, हाँ आज सुबह उठ के मंगल आरती करूंगा, 64 माला का जप करूंगा, सारे व्रत का आज पालन करूंगा, भक्तों का दर्शन करूंगा, श्रवण करूंगा, बहुत सुंदर विचार है। दूसरे दिन कल बहुत किया, पहला विचार तो यही आ जाता है, कल दिन भर केवल आध्यात्मिक कार्य ही किया आज, इसलिए आज क्या करना है? आराम। आज 8 बजे उठना है, कल मंगल आरती के लिए उठा इसलिए आज 8 बजे उठना। देखिए विचार, कल बहुत अच्छे विचार थे, आज कैसे विचार है? बड़े विपरीत विचार, द्वंद्व है। तीसरे दिन पता ही नहीं चलेगा क्या करूं क्या नहीं करूं, परसों बहुत अच्छा आध्यात्मिक कार्य किया, कल पूरी तरह से भौतिक कार्य किया, आज क्या करूं? भौतिक करूं कि आध्यात्मिक करूं? भौतिक करूं कि आध्यात्मिक करूं? 16 माला पहले करूं कि अपने कर्म पहले करूं? लाभ का पहले देखूं कि जब पहले करूं? क्या करूं? हो गया द्वंद्व, इसको द्वंद्व कहते हैं। क्या करूं क्या न करूं? द्विधा मनस्थिति, दो बातें मन में एक साथ चल रही है, उसको भगवान को निर्द्वंद्व। अर्जुन द्वंद्व में मत फंसो। इसके पहले हम चर्चा की थी माता सीता की, याद स्मरण है सबको? रावण जब सीता माता को ले गया अपने विमान में, जब वो लंका पहुंचे, तो लंका पे पहुंचने के पश्चात एक जो रास्ता है वो एक रास्ता अशोक वाटिका में जा रहा था और एक रास्ता रावण के महल की ओर जा रहा था, और उस जंक्शन पे माता सीता खड़ी है, रावण को खींच रहा है, चलो। रावण को अनेक प्रलोभन दे रहा है, मैं आपको महारानी बनाऊंगा, सारा ऐश्वर्य आपको दूंगा। दोनों ऑप्शन है हमारे सामने, है कि नहीं? दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो है बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ा ग्लैमरस है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को देखने में बड़ा आनंद आ रहा है, सुख सुख का अनुभव हो रहा है। और दूसरा रास्ता है, क्या है? अशोक वाटिका। कठिन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कुछ भी सहारा नहीं दिखता है उस दिशा में, लेकिन उस दिशा में केवल भगवान का स्मरण है। माता सीता ने उस महल को त्याग दिया, उन सारे आकर्षण अट्रैक्शन सब को त्याग दिया, और किसका स्वीकार किया? अशोक वाटिका का। वो द्विधा मन स्थिति में नहीं रही, अरे हाँ ये भी है वो भी है क्या करें, नहीं, एकदम एक ही विचार मन में आया है, जहां भगवान राम की सेवा हो सकती है, भगवान राम का स्मरण हो सकता है, भगवान राम में प्रचंड श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान आएंगे और ये भी मेरे भगवान का मुझे दर्शन होगा, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये पूरा विश्वास। चाहे कितने भी प्रलोभन होने दीजिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति होने दीजिए, भगवान पे श्रद्धा, भगवान पे विश्वास, पूर्ण विश्वास था। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने दो रास्ते, एक रास्ता तो जो है कि एक रास्ता जो है भौतिकता का सब कुछ दिखा रहा है, मेरे रिश्तेदार सगे संबंधी सब कुछ, और दूसरे रास्ते पे भगवान के आदेश उपदेश है, भगवान के ऊपर की श्रद्धा और विश्वास। भगवान कह रहे ऐसे द्वंद्व में मत रहो, एक का स्वीकार करो, मैं कह रहा हूं उसका स्वीकार करो। माता सीता ने राम अशोक वाटिका का स्वीकार किया और वहां पे भगवान के भगवान का स्मरण करते रहे, नींद में क्या किया, दूसरा कोई हवन किया, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल स्मरण किया, जप किया भगवान के नाम। भगवान के नाम का स्मरण करने से भगवान राम ने उनकी पूर्ण रक्षा की, और वो द्विधा मन स्थिति में भी नहीं। यहां पे भी भगवान कह रहे निर्द्वंद्व, कभी भी द्विधा अवस्था में मत रहिए। और जब ऐसी अवस्था आती है द्विधा मन स्थिति, द्विधा द्वंद्व की अवस्था आती है, तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि हमको जहां भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, जहां भगवान हमको नित्य स्मरण में रहते हैं, उस दिशा का स्वीकार करना चाहिए। और कैसे स्वीकार करना चाहिए? भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखे, पूर्ण श्रद्धा से भगवान का स्वीकार करना चाहिए, फुल फेथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पूरी श्रद्धा भगवान में चाहिए। जब पूरी भगवान में श्रद्धा होगी तो हम द्वंद्व में नहीं फंसेंगे। इसके पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है सुख दुख ये सब आता रहेगा, सुख दुख आएगा, लाभ हानि होगा, सब होगा, लेकिन हमको कैसे रहना है, हमको यह समझना है कि यह सब टेम्पररी है, भगवान और भगवान के उपदेश दिव्य है। पूरी श्रद्धा से भगवान के उपदेशों का पालन करने से द्वंद्व में हम नहीं फंसते। इस बात को मानते हैं? यदि हमारे मन में द्वंद्व है तो उसका अर्थ है कि भगवान के ऊपर की श्रद्धा थोड़ी सी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है। तो इस श्रद्धा को कम और ज्यादा ऐसे नहीं होने दीजिए, ज्यादा ही होने दीजिए, एक ही दिशा में जाने दीजिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इन सब बातों का त्याग करो, जो अनुकूल है उसका स्वीकार, कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसका ज्यादा नहीं सोच के त्याग करो। प्रतिकूल परिस्थिति है उसका त्याग करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब प्रतिकूल परिस्थिति का त्याग करने के लिए हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तभी तो द्वंद्व होता है, तभी तो हमको कंफ्यूजन होता है, तभी हम लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। लेकिन क्यों, उदाहरण ऐसा लीजिए कि आजकल शादियों का माहौल है, किसी मित्र के परिवार में शादी है, विवाह है, उसके लिए गए, बड़े अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन हैं, और चले गए, और वहां जाने के पश्चात जो कुछ खाना मिल रहा है वो प्रसाद नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी जानते हैं प्रसाद वगैरह सब, प्रसाद नहीं है। अब क्या करेंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ये प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति में हम आ गए, क्या करेंगे? नहीं खाएंगे तो आपके मित्र हैं, उनको बुरा लगेगा, नहीं, हमने इतना बुलाया, इतना प्रसाद, इतना भोजन की व्यवस्था की है 5 स्टार, और आप नहीं खाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति में यदि हमारे भगवान के ऊपर पूरी विश्वास, पूरा श्रद्धा नहीं है, तो हमने जैसे बताया था आहार गुणों का प्रभाव होता है, तो तमोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी व्यक्ति किस प्रकार से आहार, किस प्रकार से क्या खाता है, कैसा भोजन करता है? मसाला होना, तेल होना। अब ये खाना पड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थिति है। तो जो उपदेश है, प्रतिकूल परिस्थिति का त्याग करना, अनुकूल परिस्थिति का स्वीकार करना। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति को त्यागना, जिस दिन हमको प्रतिकूल परिस्थिति का त्याग करके आएगा, उस क्षण हमारी शुद्ध भक्ति हो जाएगी, हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना सीख लेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति को त्यागना, यही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, बताइए कितनी बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, और कितनी बार हम बोलते चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, एक आध बार करने से क्या फर्क पड़ता है, और प्रतिकूलता बढ़ती रहती है, गुणों का प्रभाव बढ़ते रहता है कि नहीं? इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति को त्यागने का ट्रेनिंग लेना बहुत आवश्यक है। भगवान अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति को त्यागना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात माया, ऐसा समझ, प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात माया। जब व्यक्ति माया में पड़ जाता है तो उसको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। वो चाहे कितना भी धनी व्यक्ति होने दीजिए, वो निर्धन है। यदि कोई कीर्तन नहीं करता, कोई भगवान का स्मरण नहीं करता, और वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, तो माया में फंसा हुआ है, वो प्रतिकूल परिस्थिति में फंसा हुआ है। बहुत ऐश्वर्य होने के पश्चात भी वो परिस्थिति कैसी है, प्रतिकूल परिस्थिति है, क्योंकि उस परिस्थिति में वो व्यक्ति भजन नहीं कर पा रहा है, भगवान के नाम का स्मरण नहीं कर पा रहा है, भगवान के उपदेशों का पालन नहीं कर पा रहा है। तो कितना भी धनी है तो ऐसे धनी व्यक्ति को निर्धन ही समझना चाहिए, और कितना भी निर्धन व्यक्ति होने दीजिए, दरिद्री, परंतु यदि वो प्रतिकूल परिस्थिति को त्याग रहा है और ऐसे परिस्थिति में भी, इतने दरिद्री अवस्था में भी वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो ऐसा निर्धन व्यक्ति भी धनी व्यक्ति है, वो निर्धन नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझ गया है, भले ही परिस्थिति प्रतिकूल होने दीजिए, उस परिस्थिति को मैं त्याग लूंगा या उस परिस्थिति के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर दूंगा। प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी, इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थिति को रोक दो। प्रतिकूलताएं आएगी, ये इस संसार का स्वभाव है। इस संसार में हमको जो भी कुछ मिलता है पैकेट में मिलता है, खुला कुछ नहीं मिलता है, पैकेट, पूरा एक पैकेट लेना पड़ता है। उस पैकेट में दोनों बातें रहती है, सुख दुख। आप बोलेंगे उसमें कहा आपको सुख निकाल के दो, ऐसा नहीं हो सकता, पैकेट सील पैक, सील तोड़ नहीं सकते, वो सब सुख दुख ये सब आपको होगा, लाभ हानि यही मिलेगा, लाभ हो रहा है कभी हानि भी होगी, क्योंकि बना ही ऐसा है। तो ऐसे तो ये होता ही रहेगा, प्रतिकूल अवस्थाएं आती ही रहेगी। अर्जुन पे आ गई तो हमारी क्या दशा है? अर्जुन एक समय बोल रहा था कि जरा दिखाओ मुझे कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार है, किसकी हिम्मत है मेरे साथ युद्ध करने की, जरा दिखाओ। अनुकूल परिस्थिति थी, बड़ा अच्छा लग रहा था सब, लेकिन तुरंत परिस्थिति प्रतिकूल हो गई। तो परिस्थिति तो अनुकूल और प्रतिकूल होते रहती है, परंतु हमको ये सीखना चाहिए, हमको ये ट्रेनिंग चाहिए कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो किस प्रकार से अपनी श्रद्धा और गाढ़ी और मजबूत करें। उसके लिए हमको शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना है, भक्तों से श्रवण करना है, भगवान के उपदेशों का पालन करना है कि नहीं? ये सब ट्रेनिंग है प्रभु जी, दिस इज ऑल ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग है, किस लिए ट्रेनिंग है? जब द्वंद्व की अवस्था जब जब भी आएगी तब तब क्या करेंगे, हा? क्या करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति का त्याग करेंगे, अर्थात उस प्रतिकूल परिस्थिति को बड़े श्रद्धा से, भक्ति से और विश्वास से उसका सामना करेंगे। त्याग देंगे अर्थात भाग जाएंगे नहीं। आप बोलेंगे प्रतिकूल परिस्थिति आगे भाग जाओ। नहीं, उसका फाइट करेंगे, सामना करेंगे, वो आवाहन का स्वीकार करेंगे, परिस्थिति ने आवाहन किया है आपको, उसका स्वीकार करेंगे। अरे पांडवों से भी ज्यादा खराब परिस्थिति थोड़ी आएगी आपको, पांडव से ज्यादा हमारी परीक्षा हो सकती है? इतनी कठिन परीक्षा, पांडव की कितनी प्रतिकूल परिस्थिति है, देखिए क्या नहीं हुआ है पांडवों के साथ, क्या नहीं है। जो माना जाता है धन, ऐश्वर्य, स्त्री और संतान, ये चारों विषयों को राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने उनसे छीन लिया। इतनी विकट परिस्थिति, ऐश्वर्य राज्य छीन लिया, उनको वनवास में भेज दिया। हमारे साथ तो ऐसा कोई एकदम आके हमारा सब छीन लेगा और हमको एकदम फुटपाथ पे बैठने की अवस्था हो जाएगी, ऐसा तो इतना तो खराब नहीं होगा। उनकी ऐसी अवस्था हो गई, भिक्षा मांगना पड़ा, शिक्षा अर्थात उनको वनवास में जाना पड़ा। दूसरा, स्त्री द्रौपदी को हार गए, पत्नी को हार गए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इतनी विकट अवस्था नहीं आएगी। ऐश्वर्य, स्त्री, संतान, अश्वत्थामा ने रात को पांचों के पांचों बच्चों को रात के समय पांचों का गला काट दिया, इतना भयानक दुख। आप सोचिए कितनी प्रतिकूल अवस्था है, और इतने प्रतिकूल अवस्था में भी उनकी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई, बढ़ते गए। तुमने ये नहीं कहा, अरे क्या हमारे साथ हमारे मित्र होके हमारे संबंधी होके भी इतना दुख दे रहे हो, क्या फायदा, क्या लाभ आपसे रिलेशन रख के, कोई फायदा नहीं है। ऐसा बोलते हैं ना, फायदा और नुकसान, लाभ और हानि, अरे क्या बोली उसके साथ बात करने में कोई दम नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तुमने ऐसा नहीं कहा कि भगवान से लाभ, बातचीत करने में उनसे संबंध रखने में क्या लाभ है, नुकसान ही तो हो रहा है। उनको पूरा विश्वास था और उनकी तो सारे प्रकार की परीक्षा हुई। तो इतने भगवान कलयुग में बहुत दयालु है। वो केवल कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं नाम के रूप में। और प्रतिकूल अवस्था आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी, लेकिन आप देखिए पांडवों की जितनी तो प्रतिकूल परिस्थिति किसी की नहीं आएगी। तो इसलिए प्रतिकूल अवस्था में भी हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। वास्तव में सुख और दुख यही हमारे सामने की समस्या है, हमारी प्रतिकूलता अर्थात दुख और अनुकूलता अर्थात सुख। सुख है तो अनुकूल है, दुख है तो ये हमारा कलयुग का फॉर्मूला है, दुख अर्थात प्रतिकूल, सुख अर्थात अनुकूल। परंतु शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं, जिस अवस्था में भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं होता है वह अवस्था अर्थात दुख, और जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है वह अवस्था अर्थात सुख। नहीं, सुख और दुख की यह व्याख्या है। इसलिए तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में कहती है कि मुझे दुख दो, क्योंकि वो दुख से क्या होगा, भगवान कृष्ण का स्मरण होगा। तो अर्थात महारानी कुंती क्या मांग रही है, वास्तविक सुख मांग रही, रियल हैप्पीनेस, है ना। जब शास्त्र कहते हैं कि सुख श्री कृष्ण के स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना अर्थात सुख है, वही अवस्था सुख की है, और स्मरण नहीं होना दुख की अवस्था है, और महारानी कुंती दुख मांग रही है। वास्तव में वो आनंद की प्राप्ति करना चाहती है, भगवान कृष्ण का स्मरण करके, और भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करके ऐसा नहीं है कि हम आनंदित हो जाते हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप करने से भगवान आनंदित हो जाते हैं। हम भगवान कृष्ण का नाम हम ले रहे हैं, लेकिन आनंद भगवान को प्राप्त होता है। जब भगवान आनंदित हो जाते तो प्रसन्न हो जाते हैं, तो नेचुरली हमको भी वो भगवान कृष्ण के प्रेम का अनुभव होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आगे भगवत गीता में भगवान कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म विद्या, हम डिसाइड करते हैं श्लोक। तो इसलिए क्या है, कुछ कंडीशन अप्लाई, ये जो सुख प्राप्त करना है केवल नाम जप करने से ही सुख हो जाता है, सुख प्राप्त होता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, केवल भगवान कृष्ण का नाम लेना है बस, कितना आसान है। नीचे लिखा है स्टार देके कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई क्या है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख, सुख दुख द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख सत्य, उसमें भी कहा कि द्वंद्व से विमुक्त हो जाओ, कौन से, सुख और दुख के। मुक्त हो जा, द्वंद्व से मुक्त हो जा। यहां कहा गया कि सुख दुख के द्वंद्व से जो मुक्त हो जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो मेरे धाम में आ जाता है, लक्षण की उसका वो मेरे धाम तक पहुंच जाता है या उसको मेरा प्रेम प्राप्त हो जाता है। विशेषकर बात यह है कि यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेगा तो ये संसार के पागलपन से वो बच जाएगा। ये जो पागलपन है ना संसार में, जहां तहां मैडनेस भोग ऐश्वर्य का मैडनेस पागलपन, हम जब घूमते यहां वहां तो हमको जहां तहां पागलपन मिलता है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का शरण लेगा वह व्यक्ति इस पागलपन से बच जाएगा, मतलब वो पागल नहीं होगा, विल नॉट बिकम अ मैड। बाकी सांसारिक सुख के लिए काम वासना ये सब बातों के चक्कर में सारा संसार मैड हो गया, नहीं हुआ, पागल के भांति तो रहते हैं, पागल व्यक्ति के जैसे ही तो जीवन यापन करते हैं। पागल व्यक्ति कभी भी कुछ भी करता है, कोई उसका नियम आचरण कुछ नहीं होता, होता है कभी भी कुछ भी करता है। वाइल्ड डिजायर्स जंगली इच्छाएं ऐसी उत्पन्न हो जाती है, पागलपन, क्योंकि भगवान के नाम का शरण नहीं लिया, शरणागति आश्रय नहीं लिया, इसलिए ये पागलपन सवार हो जाता है। तो ये पागलपन से हमको ऊंचा ऊपर उठना। तो जो व्यक्ति नाम का शरण लेता है वो व्यक्ति इस पागलपन से बच जाता है। कौन सा पागलपन? द्वंद्व का पागलपन, द्विधा अवस्थित अवस्था, सोचते क्या है क्या करें क्या है, इससे वो अपने आप को बचा सकता है यदि वो नाम का शरण लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। अब चौथा उपदेश भगवान दे रहे हैं, नित्य सत्वस्थो। हे अर्जुन, तुम नित्य शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाओ। हे अर्जुन, तुम नित्य शुद्ध सत्व के स्तर पे स्थित हो जाओ। कौन से स्तर पे बोल रहे हैं? सत्व के स्तर पे बोले हैं क्या? क्या बोले हैं? शुद्ध सत्व, मतलब तीनों गुणों के ऊपर, तम रज सत, इसके ऊपर का जो है शुद्ध सत्व, वो शुद्ध सत्व के अवस्था में स्थिर हो जाओ। शुद्ध सत्व के अवस्था में स्थिर होना अर्थात अपनी मूल चेतना में स्थिर होना, हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस मतलब शुद्ध चेतना, वो शुद्ध चेतना या ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में स्थिर होना, अर्थात कृष्ण भावना मृत में स्थिर होना। कृष्ण भावना मृत में स्थिर होना, कृष्ण भावनामृत में सर्वोच्च अवस्था में स्थिर कौन है? नित्य कृष्ण भाव, बस नथिंग एल्स देन कृष्ण, कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। कौन है? ठीक है, चेतन महाप्रभु। गोपियों में भी सर्वोच्च स्तर किसका है? जो नित्य। जय जय श्री राधेश। तो कृष्ण चेतना में अर्थात कृष्ण भावनामृत में एकदम स्थिर कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी अर्थात कौन सी शक्ति? आह्लादिनी शक्ति। और आह्लादिनी शक्ति से बाकी सारी शक्तियां आती है, सारी शक्तियां, जितनी भी शक्तियां है सारी शक्तियां आह्लादिनी शक्ति। तो हमारी जो शुद्ध चेतना है, ये शुद्ध चेतना अंतरंगा शक्ति, जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उस अंतरंगा शक्ति के वश में है। क्यों? क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति भगवान की सेवा में नित्य लगी है, भावना भावित, कृष्ण भावना, कृष्णामृत, कृष्ण भावनामृत में लगी है। तो हमारी जो शुद्ध चेतना है, वो शुद्ध चेतना अंतरंगा शक्ति के वश में है प्रभु जी, क्योंकि अंतरंगा शक्ति ही पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावनामृत है। और हमारी शुद्ध चेतना भी जो शुद्ध है वास्तव में ओरिजिनल, वह भी क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण भावना भावित है, ओरिजिनल ना, डुप्लीकेट चेतना की बात नहीं कर रहा, मूल चेतना जो हमारी। तो अर्थात हमारी मूल चेतना अंतरंगा शक्ति के वश में है, इसलिए हमको प्रार्थना किसको करनी पड़ेगी? तो भगवान यहाँ इनडायरेक्टली सारे जीवों को कह रहे हैं कि राधा रानी की प्रार्थना करो, नित्य नित्य सत्वस्थो, सत्व अवस्था में, शुद्ध सत्व की अवस्था में स्थिर हो जाओ। उस शुद्ध सत्व की अवस्था में स्थिर होने के लिए श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना करनी होगी, शक्ति की प्रार्थना करनी होगी। शक्ति ओरिजिनल मूल स्रोत शक्ति का कौन है? श्रीमती राधा। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ध्यान से उच्चारण करना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे पहला नाम किसका है? पहले कौन? राधा रानी। हरे अर्थात हरा, हरा अर्थात राधा, पहले राधा का नाम। तो राधा रानी को प्रार्थना करेंगे तो हम शुद्ध सत्व की अवस्था में आएंगे। और जब हम इस शक्ति, इस शुद्ध सत्व अवस्था पे आएंगे राधा रानी की कृपा से, और उस अवस्था में जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण चिंतन ये सब करेगी, स्मरण करेंगे तो भगवान का तो स्मरण करेंगे, और श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, सेवा करेंगे, अर्चन करेंगे, दास दास्यत्व अर्थात भगवान की दास, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, आत्मनिवेदन करेंगे। तो जब हम इस अवस्था में आएंगे और इन सारे भक्ति के जो विधि है उन विधियों को आत्मसात करते जाएंगे, तो हम भगवान को तत्वतः समझ जाएंगे और भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। और जब भगवान को तत्वतः समझेंगे, भगवान का दर्शन होगा, तो द्वंद्व का कोई प्रश्न ही नहीं। देखिए, जब तक हमारे सामने भगवान उपस्थित नहीं है, जब तक भगवान के सामने हम नहीं जाके शरण उनकी ग्रहण नहीं करते, तब तक हमारे सामने द्वंद्व है। द्वंद्व अर्थात माया, माया भगवान के सामने नहीं आ सकती, कोई उसके पीछे रहती है हमेशा। और जब तक हम भगवान के सामने नहीं है, तब तक हमको द्वंद्व परेशान करते रहेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि द्वंद्व या माया से हमको परेशान नहीं होना है, तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और भगवान को अच्छी तरह से समझना अर्थात भगवान के उपदेशों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। और भगवान के उपदेश अर्जुन बहुत अच्छी तरह से समझे, इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ समझो। और कैसे समझो? शुद्ध अवस्था में आ, शुद्ध सत्व की अवस्था में। तो भगवद गीता को यदि समझना है, समझना चाहते हैं, तो कौन सी अवस्था में आना होगा? शुद्ध सत्व की अवस्था में आना होगा। नहीं तो अनेक प्रकार से माया हमको प्रताड़ित करते रहे, अनेक प्रकार से माया के पास बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया है। वो जानती है कि कौन सी आइडिया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, माया जानती है। तो इस प्रकार से उपदेशों का पालन करना है बड़े शुद्धता से, बहुत ध्यान से बैठना है, बहुत ध्यान से श्रवण करना है, तब जाके हम भगवान को समझेंगे, भगवान के उपदेशों को समझेंगे और द्वंद्व का नाश कर देंगे, प्रतिकूल अवस्था के ऊपर मात देंगे, प्रतिकूल अवस्था को, प्रतिकूल अवस्था से हम दुखी नहीं होंगे। पांडवों की तो ये उपदेश अर्जुन को भगवान दे रहे हैं। इसका अर्थ सारांश क्या है, इस उपदेश का सारांश यह है कि नित्य सत्व शुद्ध सत्व के स्तर पर रहो और शुद्ध सत्व के स्तर पर रहने के लिए श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना करो, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का बड़े ध्यान से समझ के जप करो। फिर पांचवा उपदेश भगवान दे रहे हैं, क्या है, निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम, योगक्षेम तो सब जानते हैं, निर्योगक्षेम अर्थात निर्योगक्षेम अर्थात निर्योगक्षेम, तुम योगक्षेम की चिंता मत करो, भगवान यहां कह रहे हैं
तुम योगक्षेम की चिंता मत करो। योगक्षेम की चिंता मत करो अर्थात क्या, योगक्षेम क्या, ये तो श्लोक सब जानते हैं, क्या है वो श्लोक, नौवे अध्याय का 22वां श्लोक याद कीजिए, योगक्षेम हम अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः परिपास्यते तेषां
जो तुम्हारे पास है उसका मैं रक्षण करूंगा और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको मैं तुमको प्रदान करूंगा, अर्थात एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, ये सब शब्द जानते हैं, एक्विजिशन टेक ओवर कर लिया हमने, टेक ओवर कर लिया, एक्वायर प्राप्त किया, प्राप्ति, और प्रिजर्वेशन, हाँ प्रिजर्वेशन अर्थात क्या होता है हिंदी में, जमा करते जाना, सारी बातें जमा करते जाना उसको, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, सारी दुनिया इन दोनों बातों के चक्कर में दुखी है, इन दोनों बातों से ही तो सारा संसार दुखी है, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, जमा करना पहले से एक्वायर प्राप्त करना और जमा करते रहना, प्राप्त करते जाना जमा करते रहना, प्राप्त करते जाना जमा करते रहना। सोचिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है बताइए, भौतिक जीवन धन की प्राप्ति, और प्राप्ति हुई तो उसको कहाँ रखना, कैसे बढ़ाना, क्या करना, बताइए हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रश्न है भौतिक जीवन का, भगवान जानते कि ये लोग इसी को सबसे बड़ा प्रश्न मानते हैं और ये सब इसी को, इसी की वजह से सारा संसार सारे जीव बड़े दुख में, और वर्ल्ड इज सफरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, इसलिए भगवान ने बोल दिया डोंट वरी अबाउट एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, योगक्षेम वहां पे हम, मेन प्रश्न का उत्तर दे दिया,
मुख्य प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया। वो इसको अर्जुन को इसी श्लोक में अर्जुन को कहते हैं निर्योग क्षेम, चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन। अर्जुन का तो दूसरा प्रश्न था, पर योग क्षेम का अर्थ होता है कि इसकी चिंता मत करो, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, धरती में मत फंसो और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो कि मुझे ये प्राप्त नहीं होगा, ये प्राप्त होगा, जो है वो चला जाएगा, नहीं मैं उसको ये होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। छह नंबर का पॉइंट क्या है? आत्मवान। हे अर्जुन, तुम आत्मवान आत्मवान बनो। आत्मवान कैसे बन सकता है? जब तक इतनी सारी चिंता है तब तक आत्मवान कैसे बनेगा? मुख्य चिंता तो यही है ना, एक्विजिशन और प्रिजर्वेशन। जब तक एक्विजिशन प्रिजर्वेशन है, प्राप्ति और भुक्ति, प्राप्त करके उसको भोगना, प्रिजर्व करना, जब तक यह दो बातें हैं तब तक कैसा आत्मवान हो सकता है? कोई नहीं सकता। इसलिए पहले वो कहे निर्योग क्षेम, पहले तो इस बात से चिंता करना छोड़ो, इन बात पे चिंता मत करो, और जब इस बात पे आप चिंता नहीं करोगे तभी आत्मवान हो गए। आत्मवान मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति। कब होगी आत्मवान? जब प्रिजर्वेशन एक्विजिशन का चिंतन छोड़ दोगे। इसलिए पहले कहे निर्योग, जब तक निर्योग क्षेम नहीं होगा तब तक आत्मवान नहीं हो सकता। तो आप कहेंगे पहला ही सबसे पहला प्रश्न आएगा क्या नल से सब रिजाइन दे दे, कल सुबह 11-12 बजे उठ के ऑफिस में जाएंगे, 9 बजे पहला पेपर रेजिग्नेशन करना, छोड़ दो सब। ऐसा है क्या इसका? अर्जुन को ऐसा बोले कि भगवान साहब पान पान छोड़ के पहले जंगल में भागो, ऐसा नहीं बोले, इसका अर्थ यह नहीं होता। इस संसार में हम आए हैं तो ये सारे वस्तुओं के संपर्क में, सारे वस्तुओं का हमको उपयोग करना ही है, इस प्रकृति का भी हमको यूज करना है, वस्तुओं का भी यूज करना है, कर्म भी करना है, वस्तुओं को भी उपयोग में लाना है, प्रकृति को भी उपयोग में लाना है, लेकिन इसके प्रति आसक्त नहीं होना। वस्तुएं तो चाहिए, संसार तो चाहिए, उसमें तो नहीं होती, पर इसके प्रति आसक्ति डेंजरस है। संसार के प्रति अट्रैक्शंस, बहुत अट्रैक्शंस, बहुत आसक्ति, वस्तुओं के प्रति भयंकर लगाव, प्रचंड लगाव वस्तुओं के, खाना पीना सारी बात भोग ऐश्वर्य, इन सब के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति। ये नहीं चाहिए, इसलिए कल ऑफिस में जाएंगे तो अनासक्त होके जाएंगे, आसक्ति के साथ नहीं जाना है, कर्म करना है अनासक्त होकर। ये सोचिए कि इतना बड़ा ऑफिस है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े लोग यहाँ पे काम करते हैं, इतने बड़े ओनर हैं, इन सब को किस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रोत्साहित करूं, किस प्रकार से मैं अपनी कृष्ण भावना का स्तर और बढ़ाऊं इस ऑफिस का यूज करके, या इस काम का, इस कर्म का, इस ड्यूटी का उपयोग करके किस प्रकार से अपनी कृष्ण भावना का स्तर ऊंचा करें, लेकिन ये जाके करना है रेजिग्नेशन। भगवान अर्जुन को रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं, अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए कह रहे हैं, ये मुख्य बात है। खुद तो भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, भगवदगीता के विषय में वो जानते ही नहीं है, भगवदगीता कभी बोली नहीं है, उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, भगवान अर्जुन को अपने स्तर से ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं।
तो इस यहाँ पे भी भगवान क्या कहते हैं, आत्मवान बनो, आत्मवान बनना चाहिए।
आत्मवान बनना मतलब हमको थोड़ी कुछ मैन्युफैक्चर करना है। आत्मवान बनना मतलब क्या करना है, हम कुछ मैन्युफैक्चर करना है। आत्मवान बनना है, जो अभी मुझे कुछ और अलग बनना है, जाके कुछ फैक्ट्री में कुछ करना है और कुछ विशेष मैन्युफैक्चर करना है, कुछ रिसर्च करनी है, आत्मवान बनना है। प्रभुपाद जी महाराज एक बार एक प्रवचन से कहते हैं, विदेश में वो प्रवचन में कहते हैं आत्मवान बनना अर्थात क्या है। एक बात को समझना है, क्या समझना है, हम भगवान के अंश है, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना है, और केवल समझना ही नहीं है, उसको जानना भी है और अपने आचरण में उतारना है। तो आत्मवान बनना अगर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। जो व्यक्ति ये समझ गया और जो व्यक्ति इसका आचरण करता है वो कौन है, कौन है, कोई भी बोल है, प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतारता है वो व्यक्ति आत्मवान है। और जो व्यक्ति आत्मवान है उसका निर्योगक्षेम भी है, अर्थात वो एक्विजिशन और प्रिजर्वेशन, प्राप्ति और भुक्ति, भोग करना और प्राप्त करना, केवल इसी चक्कर में वो व्यक्ति नहीं। देखिए दोनों दोनों दिशाओं में इसको समझिए, जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो आत्मा है, वो भगवान का अंश है, वो व्यक्ति द्वंद्व में नहीं फंसता है, या जो व्यक्ति द्वंद्व में नहीं फंसता है वो व्यक्ति को आत्मवान वो व्यक्ति हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन कहा है, क्या कहा है, अर्जुन। अर्जुन इस शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ, क्लीन,
चमकदार,
इतना क्लीन, इतना शुद्ध, इतना शुभ्र, इतना चमकदार कि उसके चमक के ऊपर भौतिक संसार का कोई भी वस्तु विषय प्रभाव नहीं डालता। इतनी चमक है उसके ऊपर, कोई भौतिक संसार का वस्तु विषय वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए भगवान ने कहते अर्जुन तुम तो अर्जुन हो, तुम्हारी चेतना वास्तव में तुम तो अर्जुन हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई भी विषय वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती है, अब कैसे प्रभावित हो रहे हो इन बातों से, हे अर्जुन उठो द्वंद्व में मत फंसो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम
हरे राम राम राम
हरे।
अब आगे का श्लोक भी लेते हैं, 10-15 मिनट चलेगा, फिर बचेगा वो आगे नेक्स्ट टाइम चलेगा क्या, हाँ नहीं चलेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त बहुत अच्छे से जप कीजिए, और जप करने से सारी बातों का मूल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र का जप बस। तो बाकी सब भी चर्चा है वो इसी बात को समझने के लिए है कि हमें रोज जप करना चाहिए। जितनी पूरी भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य जितने शास्त्र है वो सारे शास्त्रों का कंक्लूजन
या उद्देश्य एक ही है क्या? हमने जप करना चाहिए बस, जप करो रोज। ये सारी चर्चा होगा उद्देश्य सार। तो एक भी दिन अपने जीवन में ऐसा मत जाने दीजिए लेकिन जप नहीं किया। मान लो एक आध दिन ऐसा आ गया अरे आज जप ही नहीं हुआ, उस दिन प्रसाद मत लीजिए। चलेगा? हाँ नहीं चलेगा कि चलेगा? यदि नहीं चलेगा तो फिर प्रसाद तो पहले जप कर लीजिए। बहुत भूख लगी है, जप भी नहीं किया है, मत प्रसाद नहीं लेगा। और नहीं 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 प्रसाद तो चाहिए नहीं, कुछ भी हो जाए प्रसाद के पहले जप कर लीजिए, जितना भी कर सकते अपना संकल्प का जितना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। हाँ अब हम इसकी चर्चा 5 दिन के कोर्स में हुई है, पर फिर भी तीसरे अध्याय चौथे अध्याय में है, तीसरे और चौथे अध्याय में कर्म के ऊपर भगवान बहुत विस्तार से बताते हैं। देखिए कोई पिता होता है, एक अपना बालक है और उसके पिता है। वो बालक जो है बहुत बार कभी कभी हट करता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े सुशील है, पर बच्चा है बालक, कभी कभी बहुत हट करता है। किसका हट करता है? वो कहता है अभी मैंने 1 गोली खाई, 2 गोली खाई, 5 चॉकलेट खाए, 7 खाए, अभी मुझे 10 चॉकलेट चाहिए। 10 चॉकलेट से क्या होगा? तकलीफ होने को पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दांत फट जाएंगे, पिताजी जानते हैं। पर बालक सोचता है नहीं, इससे तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मुझे तो ये चाहिए। परंतु पिताजी सोचते हैं नहीं, पर बालक बहुत हट करता है, नहीं चाहिए 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 चाहिए, ये सब इधर उधर फेंकने लगता है अपने स्कूल की बैग और फिर मारने लगता है। मतलब उसको इतना वो आवश्यक है वो चॉकलेट, 10 चॉकलेट। तो अंत में पिताजी सोचते हैं क्या करो, एक उसको थप्पड़ लगा देते है कि नहीं, एक थप्पड़ मारते। जैसे वो थप्पड़ खाता है धीरे धीरे शांत हो जाता है, उसको लग जाता है, दुख होता है, बड़ा भारी दुख होता है। परंतु वो दुख होने से लाभ किसका हुआ? बच्चे का हुआ, पिताजी का क्या लाभ हुआ? बेचारे पिताजी तो दुखी हो गए, कह रहे हैं मुझे इसको मारना पड़ा, मुझे इसको मारना पड़ा। पर ऐसा मारने से उसका तो लाभ ही है, उस दुख से तो उसका लाभ ही है। इसलिए भगवान के जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोग किसी अपने पुराने कर्मों के अनुसार संचित करवाने को जन्म के कर्म पीछा करते रहते हैं, कर्म छोड़ते नहीं। जब तक हम भक्ति के उच्च स्तर पर नहीं जाते तब तक कर्म हमारा पीछा करते हैं। तो पिछले कर्मों के अनुसार कभी कभी अच्छे भी लोग होते हैं, पर कोई पिछले कर्मों के अनुसार उनके जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है, दुख आ जाता है। पर भगवान ये सोचते कि ठीक है मैं इसको ये दुख इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि ये दुख ये प्राप्त करेगा तो आने वाले जो बहुत सारे दुख है इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी, जो बड़ा दुख है। एक थप्पड़ का तो कुछ नहीं, परंतु पेट में कीड़े होना, दांत सड़ना, कितना बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख। तो भगवान भी ऐसे ही सोचते हैं भक्तों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, कि इसको अभी थोड़ा बहुत तो दुख ठीक है, क्योंकि ये थोड़े बहुत दुख से इसका बहुत बड़ा दुख टल जाए। अगर एक सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है कि हम अनेकों प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हैं, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना, कभी सूर्य बनना, कभी कुछ भी बनना, इनसे कीड़े मकोड़े सब करते हैं। ये अनेकों योनियों को प्राप्त करना, इससे बड़ा कोई बड़ा दुख है? इससे बड़ा कोई दुख बड़ा नहीं। तो भगवान हमको उस दुख से बचा दे, छोटा मोटा दुख दे, क्योंकि हम सोचते नहीं नहीं भगवान हमको थोड़ा सुख चाहिए ना, इधर हमको चॉकलेट खाने में सुख मिल रहा है,
हमको जो है सिनेमा देखने में बड़ा आनंद आ रहा है, कभी कभार तो देखते हैं, कभी कभी अच्छे लोग भी कभी कभी कुछ अपना समझ नहीं पाते हैं, या फिर पिछले जन्म के कुछ संस्कार कुछ कर्म रहते हैं, तो उसके कारण उनको थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं या पिछले कर्म उनको प्रताड़ित करते हैं, परंतु भगवान देखते हैं इनको यदि इस पिछले कर्म का दुख अभी दे दिया तो ये मुक्त हो जाएगा, इसको देह मुक्त और फिर ये सुख आनंद की प्राप्ति करेगा भगवान के प्रेम की प्राप्ति। इसलिए भगवान अपने बालक को, अपने पुत्र को, अपने बालक को क्या करते हैं इस प्रकार से कवि कवि बता रहे हैं। पांडवों ने भी किया लेकिन अंत में विजय भी ना हो, अनेकों भक्तों अनेकों अभी तक जितने भी भक्त हुए सभी को प्रताड़ित किया, उनके सारे कर्म छीन दिए, सारे कर्मों का जो भी फल है उसको भगवान ने क्लियर कर दिया, उनकी आसक्तियां दूर कर दी, उनका अज्ञान जो भी कुछ है उसको दूर कर दिया। पिताजी जब एक चप्पल था चपेट मारते हैं तो बच्चे को समझ में आता है अज्ञान दूर हो जाता है, तब समझ में आता है, कभी कभी ऐसे भी होता है अज्ञान भी दूर हो जाता है। ठीक है, आपका मतलब आत्मवाद, आत्मवाद सिक्स पॉइंट आत्मवाद, वो श्लोक जो है वो पूरा छे के छे पॉइंट जो श्लोक है ना उसका एक एक शब्द होता है छे पॉइंट, इट इज नथिंग एल्स देन द श्लोक, वो सब पूरा श्लोक है, मैं श्लोक ही पढ़ा हूँ उसका कुछ नहीं किया, आई जस्ट रेड द श्लोक। देखिए श्लोक क्या है उसमें लिखा है रघुण्य विषया वेदा, मतलब वेदों के तीन विषय, तीन क्या है वेदों के विषय मुख्य तीन गुण, मतलब वेदों का जो विषय वो है तीन गुण। फिर क्या है दूसरा लाइन निस्त्रय गुण में वह अर्जुन, हे अर्जुन तुम इन तीनों गुणों में प्रमाण बता रहे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है निर्द्वंद्व, तीसरा पॉइंट क्या है निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व में मत फंसो। चौथा पॉइंट है द्वंद्व में नहीं बल्कि आपको क्या करना है नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व अवस्था में स्थिर हो जाओ शुद्ध सत्व अवस्था में। फिर पांचवा क्षय निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम और आत्मा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक जो कथा कही थी वो मैं कथा बुधवार की क्लास में कहा था, बुधवार में कोई था ही नहीं पांच सात लोग दो चार लोग, वही बात कर रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कि किस आचार्यों का गुणगान करना अर्थात उनके उपदेशों का पालन करना, उनके उपदेशों के पालन करने से आचार्यों की स्थिति होती है, स्तोत्र उसी को कहते हैं, आचार्यों का स्तोत्र पढ़ना है तो क्या पढ़ना चाहिए उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी अभी समय बहुत कम है इसलिए मैं दो मिनट की कथा बताता हूँ। एक बार एक विवाह हुआ था, मतलब विवाह नहीं हुआ और शादी की तैयारियां हो रही थी, एक लड़का जो था वो मायापुर के पश्चिम तट का था और कन्या जो थी वो पूर्व के तट की थी, और दूसरे दिन सुबह 6 बजे विवाह का मुहूर्त था। इस ये कथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कही है। तो जो बाराती है वो सारे बाराती जब 6 बजे विवाह मुहूर्त है तो कितने बजे बहुत जल्दी निकलना हमको, 4 बजे सुबह निकलना हमको, तो सुबह 4 बजे सारे बाराती पश्चिम के तट पे एकत्रित हो गए, एकत्रित होते होते 4:30 बज गए। कभी बेचारे 4:30-4 बजे उठे नहीं थे जीवन में, तो 4 बजे कौन होता है, कौन जो भक्त के शुद्ध भक्त होते हैं, अब ये कभी 4 बजे उठे नहीं थे पर उठ गए कि विवाह इसको 6 बजे की तिथि है, तो सब एकत्रित हो गए वहां पे, अब ढूंढ रहे कि कोई बोट वाला मिल जाए और इस तट से उस तट पे पहुंचा दे, ये जो तट है इस तट से पश्चिम के तट से पूर्व के तट पे पहुंचा दे। इसलिए वेट कर रहे, कोई बोट वाला उनको नहीं देखना, उस समय एक दिख गया वो सोना अपने बोट में। बड़ी अथक प्रयास से उन्होंने उसको उठाया, अरे भाई उठो। पर क्या है, बोले कृपा करके हमको उस तट पे ले चलो, सुबह 6 बजे विवाह है, यहाँ पे वर पक्ष के सब लोग बैठे हुए हैं और 6 बजे का मुहूर्त है। उस समय मुहूर्त का बड़ा ध्यान रखा जाता था, इस समय मुहूर्त छोड़ के सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, मुहूर्त का ही ध्यान नहीं रखा जाता है, बाकी सब जान बाजार धानी इन सब बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाता है। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो जैसे तैसे वो मान गया बोट वाला, ठीक है भाई ले चल दबा को, चलो बैठो। सब लोग बोट पे बैठ गए, सब लोग आधी नींद में थे, गंगा जी के ऊपर की ठंडी हवा आ रही थी, दुनिया ठंडी हवा से आंख भारी हो रही थी सभी। सब लोग बोट पे बैठ गए, बोट वाले ने अपना वो निकाला, क्या कहते थे भूल गया, चप्पू तक्कू चप्पू जो भी पतवार, वो पतवार निकाला और वो पतवार से वो अपनी बोट को ले जा रहा है। बड़ा प्रयास कर रहे बेचारा, बोट तो जाना है सुबह सुबह, क्योंकि दूसरे गांव भी जाना था, जो उसको काफी चला रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और वो भी नींद में था, वो भी आग बंद रोड में उसको खींच रहा है उसको पतवार से, और ठंडी हवा के कारण सारे जो महाराज जी सो रहे थे बोट में। धीरे धीरे 7-7:30 बज गए, सूर्योदय हो गया, और सूर्योदय के कारण वो जो सूर्य प्रकाश उनके चेहरे पे गिर गया, तो सूर्य प्रकाश के कारण सभी की नींद खुल गई, बारह दिन की, अरे डर उठो उठो। ये कथा हम पहले भी बोल चुके हैं, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का ये एक विशेष इंस्ट्रक्शन है। तो सभी का नींद खुल गया, अरे वाह वाह, घर है, 6 बजे का मुहूर्त था, 7:30 धूप बज गई, धूप आ गई, क्या है क्या, चलो चलो उठो। बोटमैन था उसके पास पहुंच गए, क्या भैया क्या कर रहे हो, अभी तक चला ही रहे हो, कहाँ है कहाँ, इधर आसपास देखे इधर उधर, अरे जहां अभी तो पानी इधर ही है जहां से वही है, बोट तो जहां है जहां थी वही पे है। तो बोट में कह रहा था, भाई तो रामबा से चला रहा हूं, सुबह से 4 बजे से चला रहा हूं, जब से आप लोग हैं। तो बोले ऐसा कैसा हो सकता है, पीछे देखिए आगे देखिए तो अरे जहां के ताई। तो सारे लोग बोट में को बोलने लगे, ऐसा हुआ जुआ कितना महत्व का है बोट, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोटमैन बोला, अरे गलती हो गई, जो एंकर से जो रस्ता खोला था रस्ता ही खोला गया, जो रस्ता बांध के रखते हैं एंकर को वो रस्ता ऐसा का ऐसा ही बांध के रखा, खोलना भूल गया और बोट चलाते बैठा। ऐसे ही हम जीवन भर कितना भी कुछ भी करते रहे, बहुत जप करें तप करें व्रत करें सब करें, लेकिन रस्ता नहीं खोला तो बोट तो वही रहेगी ना, आगे बढ़ेगी ही नहीं। वो रस्ता क्या है, वो रस्ता यही है जो इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, द्वंद्व या आसक्ति, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, प्राप्ति चाहिए, प्राप्ति या भुक्ति चाहिए, चाहिए चाहिए आसक्ति विचार वासनाएं कामनाएं, ऐसा रस्ता है। कौन सा रस्ता है, ये बांधा हुआ रस्ता, जब तक इसको खोलते नहीं तब तक बोट आगे नहीं जाएगी ना, भले कितने भी प्रयास करें, बहुत अथक प्रयास कर रहे गुरु जी, 4 बजे क्या 1:30 बजे 2 बजे उठ जाते बड़ा भारी प्रयास हो रहा है, परंतु एंकर से रोप को खोला ही नहीं है अभी तक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये वासना इच्छा कामना अट्रैक्शंस आसक्ति अटैचमेंट्स इंद्रिय भोग, ये जो रूप जो रस्ता है इसको, ये लोग खुलेगा तभी तो बोर्ड आगे प्रगति होगी। ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी कर रहे हैं। रूपा जी भी कहते हैं कि अपराध में भी है वो नाम के बल के लिए कौन सा कार्य करना, भौतिक कार्य करना। नाम का महिमा समझ गए हैं और नाम का महिमा समझ कर ऐसे कार्य करना, पूर्ण आसक्ति बनाए रखना भौतिकता के ऊपर और इतने आसक्त होना कि यदि उस वस्तु को उस विषय को प्राप्त नहीं करते तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। अर्थात इतनी ज्यादा भयंकर आसक्ति, अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स, तो ये होना अर्थात वो रास्ता बांध के रखना है। तो पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अपने उस रास्ते को खोलो। उस रास्ते को खोलने के लिए साधु संघ करो, साधु गण रास्ता खोलने में हम सबकी मदद करेंगे। इसलिए सत्संग करो और इसलिए श्रवण करो। और इतने में भी सत्संग करने के लिए भी मन नहीं मानता तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं मन को जूते से मारो। अपने ही मन को जूता निकाल के मारो, अर्थात मन को टॉर्चर करो, टॉर्चर करो उसको शिक्षा दो, चुप बैठ ऐसा बोलो मन को, बड़ बड़ करते रहता है कैसे, हर 24/7 कैसे बजती रहती, चुप कुछ समय ऐसा मन को बोलो चुप, स्टॉप देयर। और तब जब हम उसको स्टॉप करते जाएंगे तब हमको सत्संग की रुचि, सत्संग के प्रति हमारा भाव और सत्संग के प्रति हमारी आसक्ति है, ये सब हमारे अंदर है। आसक्ति है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है कि नहीं, अटैचमेंट, अट्रैक्शंस, ये सब है और रहेंगे। लेकिन साधुगण क्या करते हैं, भक्तगण क्या करते हैं, केवल उसका विषय बदल देते हैं, बस डायरेक्शन बदल देते हैं। और उसके लिए मन को सत्संग के लाने के लिए कन्विंस करो, श्रवण करने के लिए कन्विंस करो। और जब ये हो जाएगा तो बहुत अच्छे से भक्ति हो जाएगी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का उपदेश है, आदेश, सत्संग करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद महाराज की जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, हरे कृष्ण, समस्त भक्त वृंद की हा? अर्जुन त्रिगुण में था क्या बताइए, बताइए कॉन्फिडेंस के साथ। जो हमारे सामने स्थिति है उसमें, वो जो स्थिति है सामने, जो श्लोक चल रहा है उसके अनुसार बताए, अभी तक जो हम समझे उसके अनुसार। हाँ, तो प्रश्न ये हो सकता है कि भगवान के साथ रहते भी, भगवान के साथ रहके भी गुणों का प्रभाव कैसे हो, अभी तक देखिए आगे की बात मत बताइए, भगवत गीता के आगे क्या है जो यहां तक हुआ है उसके आधार पर। भगवान अर्जुन गुण निर्गुण तीनों गुणों से प्रभावित था, ठीक है मान लिया, बोल रहे था ठीक है मान लिया। फिर अभी तो हम चर्चा किए कि भगवान जो सामने होते थे गुणों का प्रभाव, वास्तविक अर्जुन का रूप क्या है, जो व्यक्ति अपने गुरु को समर्पित हो जाता है और जब गुरु उसके ऊपर प्रसन्न होकर उपदेश करते हैं, और जिसमें यहाँ पे गुरु है श्री भगवान, और जो गुरु का पूरा आश्रय ले लेता है वो तीनों गुणों से दुखी नहीं होता है, स्वाभाविक तो ऐसा शास्त्र। और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक क्या कहा है, अर्थात अर्जुन ने भगवान कृष्ण का आश्रय स्वीकार कर लिया है। बराबर, जब भगवान का आश्रय स्वीकार कर लिया है तो गुणों का प्रभाव हो ही नहीं हो सकता। तो एक तो उत्तर यह है कि गुणों का प्रभाव नहीं, अर्जुन के ऊपर गुणों का प्रभाव। फिर भगवान इस श्लोक में क्यों कह रहे हैं कि द्वंद्व से उठो हे अर्जुन, द्वंद्व अर्थात गुणों का प्रभाव। उत्तर बताया गया तो बनाया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत ही महत्व का प्रश्न है, इसके ऊपर चर्चा कुछ एक दो तीन श्लोक पहले हुई थी जिसमें हमने कहा था कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान साक्षात सामने हैं, परंतु दर्शन का क्या लाभ, उसमें हमने उदाहरण किसका दिया था, कौन भगवान का दर्शन कर रहा है, दुर्योधन। याद है, स्मरण में है, भूल गए, साक्षात भगवान का स्मरण दर्शन कर रहा है भगवान, समझा रहे, इतना भी नहीं कि बस हो गया, सब बैठ भाई मैं बताता हूं मुझे समझो, अरे समझो प्लीज समझो, दुर्योधन के मेरे प्लीज कृपा करके मेरा उपदेश समझो। यहां पर तो फिर अर्जुन को बोलना पड़ा कि कृपा करके मुझे उपदेश दो, शांति प्रस्ताव है भगवान के लिए, तो दुर्योधन को बोला है नहीं समझो सुनो। तो भगवान का दर्शन, भगवान का संग, भगवान का साक्षात दर्शन होने के पश्चात भी दुर्योधन के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव। प्रश्न अभी लगभग वही है कि क्या अर्जुन के ऊपर भी था, अंतर यह है कि अर्जुन भगवान का आश्रय प्राप्त कर चुका है, शरणागत है, और भगवान ने जिसको आश्रय दे दिया उसके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं हो सकता। दुर्योधन के ऊपर है दर्शन करके भी, क्योंकि वो आसक्त है आश्रय प्राप्त करने के लिए। और हम कैसे समझ सकते हैं किसने आश्रय प्राप्त किया किसने नहीं किया, जो आज का उदाहरण है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो बोल रहे हैं, यदि हमारी इतने सारे व्रत वैकल्य करने के पश्चात भी इतनी घनी आसक्ति है कि दोष छूट ही नहीं रहा है, पक्का बन चुका है, अर्थात हम गुरु से भले ही दर्शन कर रहे हैं, भले ही रोज भगवान का नाम जप कर रहे हैं, परंतु आसक्तियां भी इतना स्तर आसक्तियों का भी नहीं। पुणे फेस्टिवल में जो प्रवचन के महाराज का नाम किया है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम चंद्रमौली महाराज, परम पूज्य चंद्रमौली महाराज वो प्रवचन में बता रहे थे, हम कहते हैं हृदय में आत्मा है जो भगवान का अंश है, परमात्मा भी है, हृदय में परमात्मा स्थित है, परंतु प्रभु जी हृदय में काम क्रोध मोह मत्सर भी स्थित है और परमात्मा को ज्यादा अटैच नहीं होके हृदय के काम क्रोध में हम ज्यादा अटैच है, नहीं सब व्रत कर रहे, तो इसलिए दर्शन भी कर रहे जप भी कर रहे लेकिन वो रास्ता मार्ग बन चुका है, खुला ही नहीं है, तो ऐसा दर्शन करने से क्या लाभ है, उसमें तो गुरु का प्रभाव रहेगा रहेगा परंतु फिर भी भगवान कहते हैं कि फिर भी यदि आप चाहो धीरे धीरे एक एक स्तर से ऊपर उठते 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 शुद्ध सत्व के स्तर पे आ जाओ धीरे धीरे तो भी मैं आपको मेरा प्रेम प्रदान करूंगा। तो मुख्य विषय यह है कि अर्जुन इसलिए तीनों गुणों से प्रभावित है ना कि भगवान का शरण ग्रहण कर लिया। पर प्रश्न यह है कि भगवान यहाँ पे निर्द्वंद क्यों बोले बनने से, क्योंकि जो उत्तर यह है कि क्योंकि अर्जुन यदि यह नहीं करता तो भगवान आगे गीता ही नहीं बोलते भगवान गीता ही नहीं बोलते थे। भगवान अर्जुन को समय समझ गया और बस हो गया, भगवत गीता समाप्त हो गया। परंतु अर्जुन भगवान यह चाहते हैं कि भगवान भक्त भगवान की स्तुति करना चाहता है और भगवान भक्त की स्तुति करना चाहता है, भगवान भक्त की स्तुति करना चाहते हैं। भक्त भगवान का ग्लोरीफिकेशन करता है तो भगवान भी चांस ढूंढते रहते हैं कि मेरे भक्त का ग्लोरीफिकेशन मैं कैसा करूं, मेरे भक्त का स्तुति मैं कैसे करूं। वैसे तो भगवान अर्जुन को पहले ही बता दिए है कि मैं सबको मार चुका हूं बस हो गया, परंतु क्योंकि मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूं समाज के लिए आने वाले युगों के लिए, तुम्हारा ग्लोरिफिकेशन तुम भक्त हो तुमको ग्लोरीफाई करना चाहता हूं, स्तुति करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें सुनो तुम्हारे माध्यम से मैं अरे करो सुनो। इसलिए भगवान तो बता रहे और जो उसके अनुसार उस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। यदि दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं होता तो दुर्योधन और अर्जुन में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन और दुर्योधन यदि एक ही स्तर पे होते तो युद्ध करने की आवश्यकता क्या होती ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।